राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरी वर धारी माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की यदा गौर प्रेमानंदे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक क्रमांक नौ इसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जायमुदीरयेत्
यमुदीरयेत्
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती रुत्तम श्लोके
भगवती रुत्तम
श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
भक्तिर्भवति नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च
देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय
नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः
गोविंदाय
उत्तरोवाच उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगी
पाहि पाहि
महायोगी देवदेव जगत्पते
देव
जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगी
पाहि
महायोगी देवदेव जगत्पते जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं
मृत्यु
परस्परं उत्तरोवाच उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगी
पाहि
महायोगी देवदेव जगत्पते
जगत्पते
नान्यं त्वदभयं पश्ये
नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्परं
परस्परम् Vaishnavins. उत्तरा ने कहा पाहि पाहि रक्षा करे रक्षा करे महायोगी सर्वोच्च योगी देव देव पूज्यों के भी पूज्य जगतपते हे जगत के स्वामी ना नहीं अन्यम दूसरा त्वत तुम्हारे अतिरिक्त अभयम भय से रहित होने का भाव,
रहित
होने का भाव। पश्ये देखती हूँ यत्र जहाँ मृत्यु मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्णतया आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परमेश्वर है और अन्य सभी उनके सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अनिवार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय के दाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस जगत में अपने को मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बचा सकता। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के जो दूसरा महासंकट का प्रसंग है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रसंग जो था जब अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र आ रहा था अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ, और तभी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो अर्जुन तीन श्लोक वहां पे बोलते हैं और फिर भगवान से पूछते हैं कि क्या है, कृपया मुझे बताओ और मैं क्या करूं ये बताओ। तो वो पहले विपत्ति और पहली प्रार्थना है। ये जो उत्तरा बोल रही है यह दूसरी प्रार्थना है। ये दोनों प्रार्थनाएं बहुत संक्षिप्त हैं। जो विस्तारित प्रार्थनाएं हैं अभी इसी अध्याय के 18वें श्लोक से शुरू हो गए, 18वें श्लोक से 42वें श्लोक तक कुंती महारानी के 25 श्लोकों की प्रार्थना है। और यह जो है यह बहुत ही विख्यात प्रार्थना है, इसलिए उस प्रार्थनाओं के आधार पर इस अध्याय को नाम दिया है कुंती महारानी की प्रार्थना है। और उसके बाद में जो विस्तारित प्रार्थना है वो आते हैं भीष्म पितामह की, जिसपे अभी परम पूज्य भक्त सावंत महाराज चर्चा कर रहे हैं विस्तारित रूप से। तो वो प्रार्थनाएं दो विभाग में है। पहला विभाग जो है जब पहले
अर्जुन युधिष्ठिर और बाकी सब पांडवों को सांत्वना देते समय भीष्म पितामह कुछ भगवान की महिमा करते हैं और भगवान के अचिन तत्व की महिमा करते हैं। फिर उसके बाद में विस्तारित उपदेश देते हैं वो युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म पे। राजधर्म जो है महाभारत का, महाभारत में 1 करोड़ श्लोक है, 100,000, उसमें से लगभग लगभग 30,000 श्लोक जो है वो भीष्म पितामह का उपदेश है। तो हम कल्पना कर सकते हैं मृत्युशैया पे बैठे हुए इतना विस्तारित रूप से जो भाषांतर करना, प्रवचन करना है, कितना कठिन होगा वो। तो उसके बाद में इतिमतिर वितृप्ता विश्व पितामह बोलते हैं कि अभी मैं मेरी चेतना सब चीजों से पीछे ले रहा हूं और एकाग्र होके मैं भगवान पे ध्यान करने वाला हूं। तो हम इन 3 प्रसंगों में देखेंगे कि जब अर्जुन पे संकट आता है, अर्जुन प्रार्थना करते हैं, उत्तरा पे संकट आते हैं, उत्तरा प्रार्थना करते हैं, भीष्म पितामह पे संकट क्या है, अभी बहुत दर्द हो रहा है, मृत्यु सामने है, वह प्रार्थना करते हैं। पर इन तीनों में भगवान की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। जब भगवान अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो और तुम अपना ब्रह्मास्त्र निकालो, उनको मार्गदर्शन देते हैं। जब उत्तरा प्रार्थना करती है तो भगवान अर्जुन को नहीं बोलते हैं, भगवान खुद आप स्वयं ही एक कवच बन के उत्तरा के गर्भ का संरक्षण करते हैं। और जब भीष्म प्रार्थना करते हैं तभी भगवान वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो भीष्म देव की मृत्यु होती है, तो क्या भगवान उनका संरक्षण नहीं करते हैं या किसी और प्रकार से करते हैं। तो भागवतम के इन 3 अध्यायों में, शुरुआत के ही 3 अध्याय है, वैसे भागवतम की जो कथा शुरू हो रही है 7वां 8वां 9वां अध्याय, इन तीनों में ही हम अलग अलग प्रकार से भगवान का संरक्षण देखते हैं। तो इस श्लोक में जो उत्तरा प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप मेरा संरक्षण करो, आपके अलावा ना अन्यम तद भयम पश्ये, कि आपके अलावा अभयम पश्ये, अभय देने वाला ना अन्य त्वत, कि आपके अलावा और कोई नहीं है इस जगत में संरक्षण देने वाला। तो हम आज ये देखेंगे कैसे भगवान अलग अलग पद्धतियों से संरक्षण देते हैं। तो 7 पद्धतियां हम देखेंगे उसके बारे में, और महाभारत से जो प्रसंग है उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे हर एक प्रसंग के लिए। तो इसका भाव क्या है, ऐसे नहीं है कि भगवान इन 7 पद्धतियों से ही संरक्षण देंगे, भगवान और भी पद्धतियों से संरक्षण दे सकते हैं, पर हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान का संरक्षण अलग अलग पद्धति से आता है। तो ये जो 7 है, ये इसको स्मरण करने के लिए जो इंग्लिश में शब्द आता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब संरक्षण। तो इसके जो 7 अक्षर है PROTECT, तो इसके अनुसार ये 7 पद्धतियां हैं जिससे भगवान संरक्षण करते हैं। तो पी है पहला पर्सनली, पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से, वे स्वयं आते हैं और संरक्षण करते हैं। तो कुंती महारानी जब उनकी प्रार्थना शुरू करती है तो उनकी प्रार्थना 18वें श्लोक से शुरू होती है और 24वें श्लोक में वो स्मरण करती है कि हे प्रभु कितने सारे संकट आए थे हमारे जीवन में और उन सब में आपने हमारा संरक्षण किया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथाश्रुतस द्रोण्यास्त्रतस चास्महरे भिरक्षितः। तो बता रही है अलग अलग प्रसंग जिसमें भगवान आपने हमारा संरक्षण किया है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद, तो जो विष पिलाया गया था भीष्म को, महाअग्नि जब वाराणावत में बड़ा भयंकर अग्नि लगाई दी थी जिससे सारे घर को जला दिया गया। पुरुषार्थ दर्शनाथ, पुरुषार्थ दर्शनाथ मतलब जब बड़ा बकासुर, ऐसे बड़े बड़े असुर आए थे जो मानव को खा जाते थे उनके। तो ये सब प्रसंगों में अगर हम देखते हैं कई बार भगवान ने संरक्षण कैसे किया, मृधे मृधे अनेक महारथाश्रुतस, कि जब युद्ध हो रहा था तो अनेक बार आपने हमारा संरक्षण किया। तो युद्ध में जैसे अभी परसों के प्रवचन में महाराज बता रहे थे कि जब द्रोण, दुर्योधन और अर्जुन को चुनाव करना था तो दुर्योधन ने सोचा कि ये कृष्ण क्या करेंगे, वो अकेले है और युद्ध भी नहीं करने वाले, तो फिर क्या फायदा है उसका। पर ऐसे अनेक प्रसंग है जब भगवान भले ही अकेले हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। न केवल बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। कि जो भीम के पोता था, भीम के पुत्र थे घटोत्कच, उनका पोता था बब्रुवाहन, व्हाट इज हिज नेम, हाँ बारबरिक, सॉरी। तो बारबरिक को ऐसे वर चाहिए था कि मैं देखना चाहता हूं ये पूरे युद्ध को, कैसा क्या होता है युद्ध में। तो रणभूमि के बाजू में वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित होकर सारा युद्ध देख रहा था। उसके बाद में उसको पूछा गया कि आपने युद्ध में क्या देखा, तो क्या हुआ, कैसे युद्ध हुए, किसने किससे युद्ध किया, कौन सा युद्ध आपको सबसे अच्छा लगा। लोग पूछते कभी क्रिकेट मैच हो तो किसका शॉट आपको सबको अच्छा लगा, तो वही भाव है कि किसका आपको युद्ध अच्छा लगा। तो वो तो बार-बार कहते हैं मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी, क्या देखा, मैंने देखा कि कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेके सबको मार रहे हैं। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने तो अपना सुदर्शन चक्र कभी उठाया ही नहीं, एक चक्र उठाया उन्होंने, वो था एक पहिए का चक्र था। तो व्यक्तिगत रूप से भगवान ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, पर फिर भी कुछ प्रसंग है। भीष्म पितामह का प्रसंग था, जैसे उन्होंने स्वयं, जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे पूरे उत्साह के साथ, तो भगवान ने सोचा कि अभी तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो न केवल अर्जुन का वध हो जाएगा, सारे पांडवों का वध हो जाएगा भीष्म पितामह। तो भगवान ने क्या किया, भगवान थोड़ा सोचे और फिर वो कूद गए और कूद के दौड़ने लग गए सीधा भीष्म पितामह की ओर। तो जब तलवार से युद्ध होता है तो दोनों योद्धा सामने सामने होते, पास होते हैं, पर जब धनुष से युद्ध होता है थोड़ा अंतर होता है दोनों में धनुष से। तो इसीलिए भीष्म के रथ में और अर्जुन के रथ में अंतर था। तो भगवान कूद के दौड़ने लग गए। तो इसी प्रसंग का भीष्म पितामह स्मरण करते हैं, हरिरिव अंतुम इव गतो तरीयः, वो कहते हैं हरिरिव अंतुम, कि जैसे शेर होता है किसी हाथी का वध करने के लिए दौड़ते हुए आता है, जब आता है तो क्या होता है, गतो तरीयः। तो कहते हैं भगवान जब आप आ रहे थे तो आपकी जो उत्तरी थी वो गिर गई, और जब भगवान दौड़ने लग गए, तो ऐसे बताया गया है कि जब भगवान जा रहे थे तेजी से, तो उन्होंने सोचा अभी मुझे अर्जुन को बचाना है, कैसे बचाना है, तो इतना चिंता और उत्साह था कि तुरंत कूद गए वो, और फिर वो देखे कि अभी क्या लूं मैं भीष्म पितामह का वध करने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना खुद का सुदर्शन चक्र क्यों नहीं लाया, तो वो इतने भाव विभोर हो गए थे तभी कि सुदर्शन चक्र को बुलाने के लिए भूल गए। तो क्या हो गया, उन्होंने वहां पे एक चक्र दिख गया, उन्होंने सोचा कि हाँ चक्र अस्त्र है, चक्र के रूप अस्त्र में उठा लिया। और फिर चक्र भगवान की ऐसी शक्ति है कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल के पास जाने की उनको जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो चक्र छोड़ दिया, चक्र जाके सिर काट दिया। पर जब भगवान जब भीष्म पितामह को मारना चाहते थे तो उन्होंने चक्र छोड़ा नहीं, वो दौड़ते हुए उनके पास गए। दौड़ते हुए क्यों गए उनके पास, क्योंकि भगवान को चिंता थी कि अगर ये चक्र मिस हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए किसी को अगर गोली मार रही है तो पास में जाओगे तो निशाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान दौड़ने लग गए, और दौड़ के लगभग वो काफी अंतर तो चले गए, और तब अर्जुन को क्या हो गया, भगवान ने तो वचन लिया था कि कभी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भले ही ये पहिया कोई शस्त्र नहीं है पर फिर भी लोग सोचेंगे कि निंदा करेंगे भगवान की, मैं वो सहन नहीं कर सकता, इसीलिए वो बोल से चिल्लाने लग गए कि हे भगवान कृष्ण रुक जाओ। पर भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ वो भीष्म को देख रहे थे, अपना चक्र सोच रहे थे। तो फिर अर्जुन कूद गए और अर्जुन दौड़ने लग गए भगवान के पीछे, पर भगवान इतना तेजी से दौड़ रहे थे कि अर्जुन उनके पास पहुंच भी नहीं पाए थे। भगवान अभी भीष्म पितामह के बहुत करीब चले गए थे, तभी अर्जुन ने एक लॉन्ग जंप लगा दिया। जोर से कूद गए और सीधा भगवान के पैरों पे गिर गए और उनका पैर पकड़ लिया, पर भगवान का दौड़ने का प्रवाह इतना था कि अर्जुन उनके पैर में लगा हुआ वो घसीटते घसीटते वो दौड़ते चले गए। और फिर अर्जुन ने सोचा कि भगवान को रोकना ही है, तो उनके विशाल पैर थे तो उन्होंने पैर उठाए दोनों पैर और जोर से जमीन पे मारे। अब जोर से जमीन पे मारे तो क्या हो गया, जमीन में खड्डा हो गया और उनके पैर उस खड्डे में चले गए। तभी भगवान दौड़ रहे थे, अर्जुन के पैर खड्डे में, तो इसलिए भगवान रुक गए क्योंकि वो पैर उसमें जमीन के प्रवाह से रुक गया। और फिर अर्जुन ने तभी कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं कल पूरे उत्साह से युद्ध करूंगा, मैं कल जरूर भीष्म का वध करूंगा, कृपया आप शस्त्र मत उठाइए। तो तभी भगवान थोड़े शांत हो गए। तो यहां पे हम देखते हैं प्रसंग कि कैसे भगवान व्यक्तिगत रूप से अर्जुन की संरक्षा करने के लिए आ जाते हैं। पर अगर हम पूरा महाभारत देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से अधिक बार नहीं आते भगवान। तो हमें ऐसे नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि अगर मैं कुछ प्रार्थना करता हूं, कुछ संकट आ गया है, तो भगवान को व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। तो यह एक पद्धति है और युद्ध में एक बार भगवान ने ऐसे दिखाया है। पर जो दूसरा है कि प्रोटेक्ट में हम देख रहे हैं अभी पीआर, आर यानी रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि। तो भगवान कई बार जो रक्षण करते हैं वो स्वयं नहीं करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करते हैं। और अगर हम ये श्लोक देखें कुंती महारानी का, विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाथ, तो एक तरह से देखे गए तो महाअग्नि, जब वारणावर्त का युद्ध, वारणावर्त में अग्नि जलाई गई, तो उसमें भगवान कहीं थे ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। कृष्ण तो द्वारका में थे उस समय और भगवान तो संरक्षण के लिए नहीं आए थे, पर फिर कुंती महारानी कह रही कि आपने ही संरक्षण किया। तो भक्त देखते हैं कि किसी भी तरह से अगर मेरा संरक्षण हो रहा है तो अंततः यह भगवान की ही कृपा है। तो वहां पर उनका संरक्षण कैसे हुआ था? विदुर की मदद से। विदुर बड़े चौकन्ने थे और विदुर समझ गए कि ये धृतराष्ट्र है, उसको अपने जो ये पांडवों के प्रति इतना स्नेह कैसे आ गया है। वो क्या, धृतराष्ट्र ने क्या बताया पांडवों को कि ये जो वारणावर्त है वहां पे बहुत सुंदर महल है और वहां पे बहुत उत्सव होने वाला है, तो क्यों ना आप जाके वहां पे उत्सव में सम्मिलित होकर आनंद लो, और जब जा रहे हो तो वहां पे हमारी जो प्रजा है वो भी प्रसन्न हो जाएगी, उनका भी कैसे राजभार चल रहा है आप देख निरीक्षण कर सकते हो, और जो कर मिल रहा है किसी से देख सकते हो, और आप वो आनंद में भी सम्मिलित हो सकते हो। तो विदुर तुरंत चौकन्ने हो गए, सोचा कि अगर इतने आनंद की ही बात है तो फिर धृतराष्ट्र तो कभी पांडवों का आनंद नहीं चाहते हैं, वो अपने ही पुत्रों का आनंद चाहते हैं, तो दुर्योधन को क्यों नहीं भेज रहे वहां पे। उन्होंने सोचा और फिर अपने विदुर के जासूस थे और जासूस से उनको पता चल गया कि यहाँ पे ऐसा षड्यंत्र बनाया गया है, और फिर उन्होंने जो युधिष्ठिर को चौकन्ना कर दिया। न केवल उन्होंने चौकन्ना किया, पर बाद में उन्होंने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने ऐसी योजना बनाई, एक बड़ा रहस्यमय उन्होंने संदेश दिया कि जो व्यक्ति जब जा रहे थे वो हस्तिनापुर छोड़ के, तभी उन्हें संदेश दिया कि जो व्यक्ति जानता है कि जो शस्त्र शरीर को काटते नहीं है उनसे भी मृत्यु होती है वह संरक्षित रहेगा, और जो अग्नि सबको जलाती है वह, जो सांप और जानवर जमीन के अंदर चले जाते हैं उनको नहीं जलाती है वह संरक्षित रहेगा। और यह भी उन्होंने कैसे साधारण भाषा में नहीं बोला, वहां के जो लोगों की ग्रामीण भाषा थी जिसे प्राकृत भाषा कहते हैं उसमें बताया उन्होंने। तो कुंती सोचने लगी क्या बता रहे हैं, पर युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, युधिष्ठिर ब्राह्मण थे, पर वे राजनीति का भी उनका ज्ञान था, तो समझ गए क्या होने वाला है। और फिर बाद में तो विदुर ने सबसे पहले उनको चौकन्ना किया, और फिर बाद में विदुर ने क्या किया था, ऐसा एक प्रशिक्षित व्यक्ति को भेजा था कि वो उस महल से पूरा एक गुफा बना दे, और न केवल उन्होंने गुफा बनाई थी, वो गुफा जो वहां से जंगल में निकलती थी, जंगल के परे जो नदी थी उस नदी में एक नावी को भी रखा था उन्होंने कि जब पांडव निकलेंगे वहां से तो वो नावी उनको मदद करेगा और फिर वहां से वो बच के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का महत्व क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं दिखाई देता है, पर कुंती महारानी देख रही है कि भगवान ने ही कार्य किया है। तो अधिकांश रूप से हमारे जीवन में हमें जो संरक्षण मिलेगा वो भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की ऐसी चेतना थी कि जब वे जलदूत पे जा रहे थे तो उनको कई लोगों ने हतोत्साहित किया और उनको कहा कि आप अगर अमेरिका में जाओगे तो वहां पे आपको शाकाहारी अन्न नहीं मिलेगा, आप तो वैष्णव सन्यासी हो, वहां पे रहेगा कैसे आप। तो फिर प्रभुपाद जी का बड़ा संकल्प था, दृढ़ संकल्प, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सिर्फ वहां पे सब्जियां खा के जी लूंगा। पर जब वो नाव पे जा रहे थे, अभी नाव पे क्या करेंगे, तो उन्होंने जो सुमती मोराजी थे उनके वो मालिक थे जिसकी जलदूत की, तो उन्होंने कैप्टन पांड्या को बता दिया था कि ये वैष्णव सन्यासी है, इनके लिए आप पर्याप्त रूप से शाकाहारी अन्न रखिए। तो प्रभुपाद जी अपने डायरी में लिखते हैं, बड़ा बड़ी विशेष बात लिखते हो, क्या है कि मैं भगवान कृष्ण का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सुंती मोराजी के हृदय से उसको मार्गदर्शन किया कि ये सारी योजनाएं वो बना दे। तो वो सुंती मोराजी के प्रति कृतज्ञ है, पर वो क्या देख रहे हैं, सुंती मोराजी कैसे कर रही है, भगवान की योजना के द्वारा भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो फिर अधिकांश रूप से हमें मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, भक्तों के द्वारा मिलेगा, भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा मिलेगा। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं 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 भगवान डायरेक्टली मेरे जीवन में आने चाहिए, वैसे अधिकांश रूप से नहीं होता है। आपको कई लोगों को कहानी पता होगी, एक बार एक जगह पूर आ गया था, बाढ़ आ गई थी, और वहां पे एक व्यक्ति बैठा था अपने घर में, सब लोग दौड़ रहे थे अभी निकलो, तो बोले उसके दरवाजे पे खटखटाया, चलो अभी निकलो अब यहां से, नहीं तो बाढ़ से सब डूब जाएंगे। बोले नहीं नहीं मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मुझे बचा लेंगे। तो बाढ़ भी आ गई और ऊपर हो गई और ऊपर हो गई, और फिर एक व्यक्ति नाव से आया, अभी ये बाढ़ बहुत बढ़ गई, चलो अभी आप। अरे नहीं 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 मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मुझे बचाएंगे। और फिर वो ऊपर से बाढ़ इतनी ऊपर, वो अपने छत पे चले गए थे और छत पे भी पानी अभी आने लग गया था, तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आ गया और हेलीकॉप्टर से एक रस्सी चिपकी गई, चलो अभी यहां से, हाँ अभी यहां से आपको बचना है, तो यही मार्ग है। तो बोले नहीं मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान मुझे बचा लेंगे। और फिर वैसे ही बचे थे, और फिर क्या हो गया, अंत में बाढ़ आ गए और डूबने लग गए वो। बोले भगवान भगवान आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, तो तभी आकाशवाणी हुई, तो बोले मैंने मैंने ही वो सारे तीन लोगों को भेजा था, मैंने ही पहले चेतावनी देने वाले पहले लोगों को भेजा, फिर नावी को भेजा, फिर हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, तुमने नहीं बोला, अभी दोष किसका है। तो इसीलिए भक्त कभी ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि भगवान मेरे संरक्षण के लिए कुछ चमत्कार करना चाहिए, कि भगवान साधारणतया अपने भक्तों के द्वारा हमारा संरक्षण करते हैं। तो यह है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। और फिर जो ओ है, ओ इंग्लिश में शब्द होता है ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस मीन सर्वशक्तिमत्ता, जो भगवान की विशाल शक्ति है उसके द्वारा वो कभी चमत्कार भी कर सकते हैं। तो ऐसे चमत्कार की अपेक्षा भक्त नहीं करते हैं, पर भगवान चमत्कार करते भी हैं कभी कभी। और ये हम देखते हैं असत सभाया, असत सभाया मतलब कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी असीमित शक्ति के द्वारा द्रौपदी का जो वस्त्र था सारी थी उसको असीमित लंबा बना दिया, असीमित लंबा बना दिया। कभी कभी हमारा का चित्र देखते हैं तो वो उसका उसका जो दृष्टांत जो करते हैं दिखाते हैं वो अलग अलग पद से दिखाते हैं। कभी कभी वो दिखाते हैं कि वहां पे कृष्ण भगवान स्वयं हैं और हाथ ऊपर करके हंस रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा से वो सारी दे रहे हैं। कभी कभी दिखाते हैं वो एक चक्र है वहां पे और चक्र से सारी आ रही है। कभी कभी दिखाते हैं एक ज्योति है वहां से सारी आ रही है। तो वास्तव में क्या हुआ कि किसी को समझा नहीं, तो कृष्ण भगवान थे पर कभी किसी ने वहां पे कृष्ण को देखा नहीं, वो साड़ी कहां से आ रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। क्या हो रहा था, तभी वास्तव में दुशासन खींचे जा रहा था पर जो सारी कभी अंत ही नहीं हो रही थी, तो उतना ही देख रहे थे सब और सब आश्चर्यचकित हो गए। तो यहां पे भगवान कभी कभी चमत्कार भी दिखा देते हैं, कभी कभी वे चमत्कार भी दिखा देते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मुझे वो श्याम सुंदर प्रभु जो एक बड़े विख्यात हाँ संगीतकार थे जॉर्ज हैरिसन, उनके मित्र बन गए थे। और उन्होंने जॉर्ज हैरिसन से फिर तभी लंदन में जो मंदिर बनाने वाले थे तो उसके ऊपर पूरा मंदिर का जो अल्टर था पूरा वो उनको संगमरमर मार्बल का बनाना था, तो इसीलिए जॉर्ज हैरिसन से उन्होंने डोनेशन लिया था। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे कृष्णा बुक छापना है, अभी तो मुझे कृष्णा बुक छापना है, और तुम जाके जॉर्ज हैरिसन से कहो कि हमें उसके लिए पैसे चाहिए। तो फिर जो श्याम सुंदर प्रभु जो थे उन्होंने वो जॉर्ज हैरिसन का जो विश्वास इस तरह से जीता था कि वो बोले थे कि हम आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए आपको, हम को बहुत से लोग आते हैं उनको पैसा मांगते हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये जो मार्बल था वो भी उन्होंने बता रहे थे कि मैं ये मंदिर बनाने में मदद कर रहा हूं, तो बोले मैं क्या करूं, जॉर्ज हैरिसन ने कहा था, तो उन्होंने क्या आप मार्बल दे सकते, तो अभी अभी उन्हें मार्बल का डोनेशन दिया था। तो फिर तो श्याम सुंदर प्रभु थोड़े हिचकिचाने लग गए, वो बोले कि प्रभुपाद जी मैं अभी उससे मांगा है और अब बार बार मांगेंगे तो हमारा जो रिश्ता है वो उससे कम हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं मांग रहे हो, तुम जो उसका दोष है मुझ पे लगा दो, तुम बोल दो कि मेरे गुरु ने बताया है कि आप ये दे दो। तो श्याम सुंदर प्रभु क्या करने लगे, तो फिर वो उनसे मिलने गए, उनका बड़ा महल था। तो फिर जब मिले तो फिर वो बातचीत हुई थोड़ी बहुत, और फिर उन्होंने कहा कि जो हम कृष्णा बुक छाप रहे हैं उसके लिए कुछ डोनेशन चाहिए। और जब वो जौहर से सुना तो उनका चेहरा पूरा गिर गया। और तो बोला कि आई हैड नॉट थॉट यू वर लाइक दिस, मैंने सोचा था कि तुम ऐसे हो। तो अभी शाम सुंदर प्रभु बोले क्या करोगे, पूरा उनका जो सिया था उतावला हो गया। और अचानक तभी क्या हो गया, तभी वातावरण पूरा बिल्कुल साधारण वातावरण था, पर अचानक बड़ी बिजली हो गई और ऐसे मानो थार 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 जब कुछ गिरता है आसमान से, बिजली कहीं गिरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तभी पावर चला गया, पावर चला गया और 3 4 5 मिनट तक चला। और उस समय बाद में श्याम सुंदर बोलेगी हमने तभी वेदर फोरकास्ट वगैरह चेक किया जो भविष्यवाणी होती है वातावरण की, तो वहां पे कुछ भी बादल नहीं था, कुछ भी बिजली होने का संभावना नहीं था। तो 5 मिनट तक ऐसे बिजली गिरती रही और फिर पूरा अंधेरा था। और जब वापस रोशनी आ गई तो जॉर्ज हैरिसन का चेहरा प्रसन्न हो गया था, बोले उसके बाद तो मुझे देना ही पड़ेगा भगवान कृष्ण। तो फिर न केवल उन्होंने वो लक्ष्मी दे दी, पर वो किताब के लिए अपना फॉरवर्ड भी लिख दिया उन्होंने, प्रस्तावना होते हैं वो भी लिख दी। तो कभी कभी भगवान चमत्कार भी कर सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि ये प्राचीन काल में चमत्कार हुए थे, आधुनिक जीवन में भी चमत्कार होते हैं कई बार। तो ये चमत्कार है। तो कभी कभी वल्लभ विद्यानगर में मंदिर है, तो बड़ा मंदिर है, तो वो जो वहाँ पे वो जो मंदिर का प्रांगण है उसके जो वो किसी एक भक्त का घर था वो, तो वो भक्त सोच जो वहां पे मंदिर केंद्र था वो सोच रहे थे कि हमें मंदिर बनाने की जगह चाहिए, फिर उसको बनाना है बड़ा मंदिर, कैसे बनेगा पता नहीं। तो वो जो बड़ा बंगला था उनका, वो उनके सपने में आ गए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो तुम्हारा बंगला है तुम मंदिर बना दो। और फिर तो हमें डरना नहीं चाहिए, कैसे हमारे सपने में भी आ जाएगा। तो ऐसा बहुत कृपा की बात है अगर कोई आते हैं भगवान तो। तो फिर और फिर उन्हें वैसे कर दिया। तो भक्त सोच रहे थे कि अभी हम कहां से इतना फंड्स लाएंगे, फिर मंदिर बनाएंगे, तो रेडीमेड मंदिर मिल गया। तो कभी कभी भगवान ऐसे चमत्कार भी कर सकते हैं, पर भक्त ऐसे चमत्कार की मांग नहीं करते हैं भगवान से। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि हम सब भगवान के सेवक हैं, और सेवक का भाव क्या है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ना कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते समय कोई व्यत्यय आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो भगवान तभी जरूर मदद करते हैं, पर वो अपेक्षा या वो मांग भक्त नहीं करते हैं। भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद जी को पूछा गया था एक बार कि प्रभुपाद हम भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी बोले थे कि एक ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु आपकी सेवा करने की शक्ति हमें दीजिए, प्लीज गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू। जो भी परिस्थिति आए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, आपके सेवा करने का हमें शक्ति दीजिए। और वही भाव वास्तव में हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप में करते हैं। तो यह है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। फिर टी जो है प्रोटेक्ट में हम चल रहे, टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं। तो शिक्षाएं ये बड़ी महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा भगवान संरक्षण देते हैं। तो साधारणतया अगर अभी हम देखते हैं कि युद्ध शुरू होने के पहले ही अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। सार्थम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तो ऐसे बताया गया है रघुकुलान भगवान की जय। सो गीता महात्म्य अलग 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 आचार्यों ने लिखा हुआ है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में एक श्री वैष्णव गीता महात्म्य है, उसमें श्लोक आता है कि भगवान ने कैसे अपने भक्त अर्जुन की रक्षा की। सारथ्यम अर्जुन स्यादौ, वे अर्जुन के सारथी बन गए, और कुर्वन् गीतामृतं ददौ, और फिर उन्होंने जो गीतामृत था उसको प्रदान किया। लोकत्रयोपकाराय, इससे न केवल उन्होंने अर्जुन का कल्याण किया पर सब लोगों का कल्याण करा। लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः, तो ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। तो अभी शिक्षाओं के द्वारा संरक्षण का मतलब क्या है? अगर कोई बालक बोलता है कि मैं 10वीं मंजिल से कूद जाऊंगा और मेरे पिताजी मेरा संरक्षण कर लेंगे, वास्तव में पिताजी का संरक्षण क्या है, पहले उनको बताना, शिक्षा देना कि आप ऐसे कूदना नहीं चाहिए। तो जो शिक्षाएं है मतलब क्या, गलत कार्य पे न जाए यह बताना भी शिक्षा है और यह शिक्षा भी संरक्षण है। तो अगर भगवान की शिक्षाओं में के रूप में जो संरक्षण है उसका हम पालन नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद में अगर हमारा संरक्षण नहीं होता है तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। अगर कोई बालक कूद जाता है 10वीं मंजिल से और फिर उसके हाथ पैर टूट जाते, पिताजी आपने मेरा संरक्षण क्यों नहीं किया, अरे तुमने मेरे बात को पहले माना नहीं इसीलिए संरक्षण नहीं हुआ। तो अभी प्रधान रूप से हमारा संरक्षण क्या है, ये चार नियम है। जो चार नियम है यह वास्तव में क्या है, ये हमारे जीवन के लिए के संरक्षण के लिए कुंपन है। से कुंपन होता है, कुंपन से कोई जानवर या कोई ऐसे खतरनाक चोर वगैरह होते हैं उनको आने में समस्या होती है। तो यही हम देखते हैं रामायण में। लक्ष्मण अभी जब लक्ष्मण चले गए वो राम के आवाज में, जब मरीच ने चीख मारी थी तो तभी बताया गया है कि लक्ष्मण ने क्या किया, सीता माता को कहा कि आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाओ। तो लक्ष्मण रेखा के जब बाहर चले गई तो क्या हो गया, तो उनको अपहरण करके रावण लेके गए। तो भगवान की जो शिक्षाएं है वह केवल सुन के हंसने के लिए, तालियां बजाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है, वह हमारे जीवन में अमल करके संरक्षण प्राप्त करने के लिए है। और जितना हम ये शिक्षाओं का अमल करेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ऐसे नहीं है कि भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे, पर हम देखते हैं कि जितने लोग ये कार्य करते हैं, अवैध संग करते हैं, नशापान करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो ही उसके बाद में ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं कि जीवन बहुत जटिल हो जाता है उससे। पर ये जब कार्यों से हम कार्य को छोड़ देते हैं तो हम क्या होता है, हमारा संरक्षण होता है। तो हमें जो भगवान की शिक्षाएं हैं उनको एक ऐसे बंधन के रूप में नहीं देखना है, संरक्षण के रूप में देखना है। बंधन मतलब रेस्ट्रिक्शन, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। कि जब माँ अपने, जब कोई बड़े बहुत भीड़ ऐसे जगह में है और ऐसे भीड़ से अगर कोई जा रहे हैं, माँ और बालक जा रहे, तो माँ बोलती है बालक को, मैं तुमको अपनी गोदी में उठा लेते हैं, अपने हाथ में पकड़ती हूँ और फिर हम जाते हैं। तो नहीं 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 मुझे खुद चलना है, अगर बालक बोलता है। तो अभी इतनी भीड़ है, अगर हाथ छूट जाएगा कहाँ घूम जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो बालक को लग सकता है कि मैं माँ बोल रही, मैं उठा लूंगी तुमको, मैं तुम्हारे हाथ में रखोगे, मेरे हाथ में रहोगे। तो बालक को लग सकता है कि माँ मुझे बंधन, मैं चल सकता हूँ ना, मुझे चलना आता है ना, मैं बंधन, मैं कैसे बंधन में क्यों पढ़ू। पर बंधन नहीं है, संरक्षण है। हमारा मन कभी कभी हम बोल सकता है कि नहीं ये सब कार्य करूंगा मैं, पर मैं समस्या में नहीं फंसूंगा, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे बोलना है कि मैं 10वीं मंजिल से गिरूंगा, कूदूंगा, पर मेरा हाथ पैर नहीं टूटेगा। तो शिक्षाएं जो है ये प्रधान संरक्षण है। तो हमारे जीवन में भगवान के प्रतिनिधि और भगवान की शिक्षाएं, ये दोनों पद्धतियों से हमें संरक्षण मिलता है। और फिर ई जो है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। तो अगर हम इस देखते हैं विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ, जो पुरुषाद दर्शनाथ, जो बड़े बड़े असुर आते थे और वे असुर जब आक्रमण करते थे, अभी जो बकासुर था, दो बकासुर है, एक बकासुर कृष्ण लीला में है जो वृंदावन में थे, और एक बकासुर जो है वह पांडवों के पहले वनवास में थे। पांडव दो बार वनवास में गए, पहला वनवास जब था कि जब वो वाराणावत को जलाया गया तब वो वन में रह रहे थे कुछ समय के लिए, और दूसरे बार जब वो जुए में हार गए तो उसके बाद में वन में गए थे वो। तो पहले बार जब वन में गए थे तो एक बड़ा खतरनाक असुर था, एक वो एक चक्र ग्राम जो नित्यानंदपुर का धाम है वहां पर रहता था, और उसके साथ भीष्म पिता जो भीम ने बड़ा युद्ध किया। तो क्या हुआ था, वो सब को असुर कभी भी किसी को आके मार डालता था, तो वहां के नागरिकों ने क्या योजना की थी कि हम रोज एक व्यक्ति को तुम्हारे लिए एक बड़ा जो बैलगाड़ी है उससे भरे हुए अन्न के साथ भेज देंगे। तो फिर जिस घर में पांडव रह रहे थे उस घर से तभी एक व्यक्ति को जाना था, तो तब सब परिवार वाले रो रहे थे कि अभी किसको भेजेंगे। तो कुंती महारानी ने कहा कि भीम तुम जाओ, तो भीम बड़े उत्साही हो गए क्योंकि उनको तो जो क्षत्रिय भाव सब बहुत अधिक था, तो उनको युद्ध करने की इच्छा थी।
तो उस समय उन्हें ब्राह्मण का रूप लिया था, तो ब्राह्मण युद्ध भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो उत्साह चले गए और फिर वो बैलगाड़ी भर के पूरा अन्न था। तो भीम ने कहा वैसे भी तो इसको मारने वाले है, सोचा उन्होंने, तो अगर मरने वाला है तो उसको खाने क्यों दूं, मैं पहले खा लेता हूं। तो वो जाते जाते खा रहे थे और आराम से गए, और उधर वो बकासुर भूख से तड़प रहा था और कौन है चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, और फिर देख रहा था बार बार कोई आ रहा है नहीं। और बाद में उसने देखा कि ये व्यक्ति आ रहा है, इतना आराम से आ रहा है और क्या कर रहा है, मेरा अन्न खा रहा है। और खा रहा था और तभी कुछ लगभग कुछ बचा ही नहीं था, तो इतना क्रोधित हो गया बकासुर, वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी पूरी चटनी कर दूंगा। तो भीम ने उसको देखा भी नहीं, सब खाते गए और चिल्ला के आके भीम को मारने लग गया। भीम सिर्फ खाते गए, हाँ के पीठ पे मारा तो कुछ भी हुआ नहीं भीम को, भीम खाते गए। चिल्ला रहा था, घुर रहा था, ऐसा खौफनाक आवाज कर रहा था। और उसको और उकसाने के लिए भीम ने क्या किया, उतर गए हरवट से, पूरा खाना तो खा लिया था, अभी उतर गए और फिर और उसको और उकसाने के कहला, उन्होंने पानी लिया, पानी पिया, आराम से हाथ और मुंह दिया धोया और फिर उसके ओर मुड़े और फिर अपनी सारी शक्ति से उसको मार डाला। तो यहां पे जो शक्ति थी भीम को कहां से मिली थी, यह भगवान की कृपा से मिली थी। भगवान की कृपा कैसे हुई थी, ऐसे नहीं है कि भगवान ने कभी भीम के शरीर पे हाथ रखा था, अभी मैं तुम्हारे शरीर में शक्ति प्रदान करता हूं, नहीं, उनके जन्म से ही शक्ति बहुत थी। और जबकि वो जन्म से शक्ति मिलती है, प्रतिभा होती है, वो कहाँ से आती है, जो वो वास्तव में भगवान की कृपा है। तो भीम की शक्ति इतनी थी बचपन से ही कि एक बार जब पहले कुंती और पांडु जंगल में वास कर रहे थे, तो तभी एक पहाड़ के ऊपर वो बैठी थी, कुंती और पांडु बैठे थे और कुंती तभी सो गई थी, थोड़ी सो गई थी बैठे बैठे, तभी पास में ही कहीं एक शेर का आवाज आया। तो पहाड़ के बाजू में बैठे थे वो, वहां पे जो सारा सुंदर दृश्य देख रहे थे, तो पहाड़ का जब आवाज आया, जब शेर के गुराने का आवाज आया, तो क्या हो गया, कुंती उठ गई, और उठ गई तो उनके गोद में जो भीम था वो क्या हो गया, फेंका गया और पहाड़ से नीचे गिर गया वो। तो कुंती चीखने लगे क्या हो गया ये, और जो पांडु थे वो भी डर गए, और पांडु तेजी से वो पहाड़ से नीचे दौड़ते आ गए, और दौड़ते आके देखा कि जो भीम था एक बड़े पत्थर पे गिरा था, और क्या होता है, गिरने से वो पत्थर पूरा टूट गया था और भीम को कुछ भी नहीं हुआ था। तो भीम की ऐसी जो शक्ति थी वो कहां से आई थी, भगवान की कृपा से थी। तो कुंती महारानी देख रही है कि ये शक्ति है भगवान की कृपा है, और यही हम देखते हैं कि इसी स्कंद के बाद 15वें अध्याय में आएगा, 14वें 15वें अध्याय में, कि कैसे अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी पर वो चले वांछितो हम महाराजा, कहने लगे मेरी सारी शक्ति चली गई है। क्यों चली गई है, क्योंकि भगवान ने दी शक्ति और भगवान ने जब चाहा तो वो शक्ति ले ली। तो इसीलिए हमारी भी एक क्षमता होती है, प्रचार करने की हो, कीर्तन करने की हो, मैनेजमेंट करने की, जो भी प्रतिभा होती है, क्षमता होती है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, वास्तव में भगवान की कृपा है, उसके कारण मैं ये सब कार्य कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद में जो सी है, सी मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब वैसे नहीं कि जैसे भगवान इनमें से किसी एक पद्धति से करेंगे, ये सब पद्धतियों के समन्वय के द्वारा भी भगवान कर सकते हैं। तो यह हम देखते हैं विषान, जब भीम को जहर पिलाया गया था तो क्या हुआ था, अलग अलग परिस्थितियों का समन्वय हो गया। तो जब दुर्योधन ने उस समय जो पांडु के पुत्र थे पांडव, वे उनको वो तो नेक हृदय के थे और वो दुर्योधन के बारे में कोई संशय नहीं कर रहे थे, तो एक बार दुर्योधन ने कहा कि मैंने आप सबके लिए बड़ी मेजबानी बनाई है, तो आओ हमारे साथ, हम सब साथ में खाते हैं। और फिर जब वो खा रहे, सबको खिला रहे थे, तो उन्होंने स्वयं क्या किया, दुर्योधन ने, वो बोले स्वयं मैं भीम तुम्हें खिलाता हूं, और भीम के जो अन्न था उसमें पूरा जहर डाला था उन्होंने। और फिर वो खाके हो गया, अभी बोले चलो हम खेलते हैं। तो अभी वो पानी में खेल रहे थे, दुर्योधन इंतजार कर रहे थे, ये जहर का कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा है, कब प्रभाव होगा, भीम का शरीर इतना शक्तिशाली था कि कुछ प्रभाव होने को काफी समय लग गया, उन्हें ऐसा जहर डाला था कि कुछ ही समय में व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा। तो उनकी योजना था कि क्या थी कि दुर्योधन की योजना थी कि हम बोले कि हम सब खेलते हैं और बाकी सब पांडव उसके खेलने चले जाएंगे, भीम बोलेगा कि अभी मुझे थोड़ा सोना है और जब वो सोना सोतेगा तो वो हमेशा की नींद हो जाएगी उसकी। पर वो भीम खेल रहे थे, खेलते जा रहे थे, पर बाद में थक गए थोड़े भीम, तभी बोले मैं थोड़ा लेटता हूँ। और लेट गए तो दुर्योधन की तुरंत योजना थी कि अपने सारे भाइयों को लाया और सारे शरीर को बांध दिया और शरीर को बांध के फिर बाद में बास में नदी थी उसमें फेंक दिया, चाहे खत्म हो गया सब कुछ। जब फेंक दिया तो उस नदी में जहरीले सांप थे और वो जहरीले सांपों ने जब देखा, कह रही मानो हमारे इसमें कैसे आ गया, ठक 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 काटने लग गए। पर क्या हो गया था कि भगवान की योजना ऐसी थी कि दुर्योधन ने ऐसा जहर चुना, बहुत से जहर चुन सकता था वो, पर उसने ऐसा जहर चुना कि वो जहर और ये सांपों का जहर था और वो दोनों ने एक दूसरे का प्रतिकार कर दिया। तो ये पहले शरीर में जहर था और ये दूसरा जहर सांपों के काटने से आ गया, प्रतिकार हो गया। और फिर उसके बाद में भीम होश में आ गए और सभी सांप देखे साधारण लग गया, सांप डर जाएगा। भीम ने देखा अच्छा चलो सांप को पकड़ के सब फेंकने लग गए। तो सांप देखे किसी मानव ने ऐसे हमारे साथ किया नहीं है, सब पकड़ के फेंक देना ऐसे, तो वो डर के चले गए। और जो नदी के अंदर जो वरुण के राजा थे, नदी के राजा थे, उनके पास चले गए, बोले एक खतरनाक मानव आ गया है, ऐसा मानव कभी देखा ही नहीं हमने, उसको बुला के लेके आओ, तो उसको आप कुछ करो। तो जो उसके जो मंत्री थे वो जानते थे कि ये कौन है, उनको थोड़ा दूरंदेशी थी, तो वो समझ गए कि ये भीम है और पांडु और ये मित्र थे पहले से, ये नदी के राजा। तो उन्होंने उनको बुला लिया, वरुण ने उनको बुला लिया और फिर उन्हें कहा कि आप हमारे अतिथि बन के आए हो तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो अमृत जैसे तुल्य, जैसे सोम होता है स्वर्ग में, वैसे उनके पास भी एक अमृत तुल्य जैसे था द्रव्य था, और ये द्रव्य पीने से आप बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। तो फिर भीम दो चीजों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, खाना और युद्ध। तो उनको भीम कर्मा वृकोध रखा था। तो अभी वो जहर का प्रतिकार हो गया था, तो फिर वो जो एक ऐसा बड़ा मटका होता था और वो जो वरुण ने सोचा कि आप जितना आप पीना चाहते पी सकते हो इसमें से, तो साधारण व्यक्ति जो होता है बोले उनके से सबसे बड़ा योद्धा भी था वो एक मटके से ज्यादा नहीं पी सकता था। तो भीम ने उठाया वो एक मटका तुरंत पी लिया, दूसरा मटका पी लिया, तीसरा मटका पी लिया, और सब जो वरुण के योद्धा देख रहे थे क्या चल रहा है ये, कैसे कोई इतना पी सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 मटके उन्होंने पी लिए। और फिर बोले अभी मुझे सोना है। तो फिर उन्होंने अच्छा कमरा दिखाया था, उसमें बिस्तर दिखाया था और वो सो गए भीम ऐसा। तो क्या वो जो अमृत तुल्य जो द्रव्य था उससे क्या होता था, जो शरीर था वो एक एक मटका पीने से व्यक्ति के शरीर में 1000 हाथियों की शक्ति आ जाती थी, तो उन्होंने 7 मटके पिए थे। तो फिर क्या हो गया, भीम की शक्ति, शरीर तो वज्र जैसे बन गया और उनकी शक्ति थी लगभग असीमित जैसे हो गई। इसीलिए जब भीम युद्ध करते थे तो जब युद्ध होता था तो वो भी कभी कभी धनुष और बाण इस्तेमाल करते थे, पर धनुष बाण में उनको मजा नहीं आता था। तो फिर वो क्या करते थे, थोड़ा बोर हो गए तो फिर वो अपने रथ से उतर जाते थे और अपनी गदा लेते थे और गदा लेके सीधा शत्रु के सैनिकों के अंदर चले जाते थे, अपनी गदा घुमाते रहते थे। और वो कौरों के सैनिकों ने ऐसे कभी देखा ही नहीं था, कोई शत्रु हमारे अंदर ही आके हमको मार रहा है, दूर से युद्ध ठीक है पर हमारे। और जब भीम ऐसे युद्ध करते थे तो उनकी से इतनी शक्ति थी कि तो ऐसा लोग अवध करते, उनका सारा शरीर जो था खून से भर जाता था और सारा उनका शरीर लाल जाता था, और लाल शरीर में सिर्फ उनकी आंखें और उनका दांत सफेद था। तो उनको देख के ही सब डर जाते थे। तो जो ये भगवान अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा भी भक्त को शक्ति दे सकते हैं, तो ये है परिस्थितियों के द्वारा, सर्कमस्टेंस कॉम्बिनेशन के द्वारा। और जो अंतिम जो है प्रोटेक्ट में, टी यानी टाइम, समय। कभी कभी भगवान का संरक्षण प्राप्त करने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। तो कभी कभी भगवान ऐसा संरक्षण देते हैं कि वो तुरंत हमें पता नहीं चलता है। तो आप चाहे जानते हो, ये एक हास्यास्पद प्रसंग है, वास्तविक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, शास्त्रिक नहीं है ये, पर इससे समझ में आता है। तो एक बार व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से उन्हें कहा, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो, हे भगवान आप तो इतने महान हो, आप शक्तिशाली हो, आप सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हो, मस्का लगा रहे थे भगवान को। उन्होंने कहा कि हमारा एक पल आपके लिए क्या है, बोले तुम्हारा एक पल नहीं, तुम्हारा एक पल हमारे लिए क्या है, तो वो हजारों साल है, कितने महान हो तुम, तो तुम्हारा एक आना हमारे लिए क्या है, बोले करोड़ रुपए है वो, ठीक है आप कितने महान हो, आप एक कृपा करो मुझे, आप आपका एक आना मुझे दे दो। तो भगवान बोले एक पल के बाद।
तो भगवान को हम फंसा नहीं सकते,
भगवान का स्वर्ग जो होता है उनके काल के अनुसार आता है। वास्तव में अगर हम महाभारत देखते हैं तो भगवान स्वयं थे, पांडव इतने शक्तिशाली थे, पर पांडवों को राजा भी को स्थाई रूप से राजा बनाने के लिए भगवान को 84 साल तक प्रयत्न करना पड़ा। 84 साल के बाद, 84 साल के प्रयास के बाद जो पांडव थे राजा बने। वो कैसे है, वनवास तो 12-13 साल था, पर उसके पहले भी बहुत से षड्यंत्र चल रहे थे। महाभारत को बड़े बड़े अच्छी तरह से परखना पड़ता है, तो हमेशा कितने साल गए, और उसके बाद में पांडव कौरव का वध हो गया, उसके बाद में वो प्रस्थापित हो गए। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, प्रभुपाद जी को आदेश दिया उनके गुरुदेव ने प्रचार करने का 1922 पहली मीटिंग में, 1922 में, और प्रभुपाद जी ने लगभग 1940-42 से उन्होंने प्रचार अच्छी तरह चालू कर, बैक टू गॉड है लिखना चालू कर दिया। पहले भी वो प्रचार में मदद कर रहे थे अपने गुरु भाइयों को, पर वास्तव में प्रभुपाद जी को यश कब मिला, भारत में लगभग 40 साल में प्रचार किया, कुछ यश नहीं मिला। 1965 में वो अमेरिका गए, पहला साल तो बहुत कठिन था, 1966 के बाद में यश मिलने लग गया, और तभी भी इतना यश नहीं मिला। 1968 में प्रभुपाद जी को बड़ा वो अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया था, और उसके कारण उनको भारत दुनिया वापस आना पड़ा। पर वो जो सारा हादसा हुआ उससे उनके जो शिष्य थे उनको और प्रेरणा मिली कि ये स्वामी जी इतने वृद्ध है फिर भी हमारे लिए इतना त्याग कर रहे हैं, और तभी उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। फिर 1968 में प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, उसके बाद में जो हरे कृष्ण आंदोलन का विस्फोट जैसे का प्रचार हो गया, तो प्रभुपाद जी को भी प्रचार करने के लिए 46 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो इसीलिए हमें तुरंत नहीं अपेक्षा करनी चाहिए कि मैं आज हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूं भाई, कल सुबह उठूंगा तो काम क्रोध लोभ सब गया।
ऐसे नहीं है।
मैं आज हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूं, कल जब मैं प्रवचन दूंगा सब लोग तालियां बजाएंगे, तालियां तालियां तालियां,
ऐसे नहीं होता है।
समय लगता है, तो एक तरह से समय के सब्र रखना यह श्रद्धा का लक्षण है, कि श्रद्धा जो होती है, मेरे भगवान में श्रद्धा है मैं कैसे बोल सकता हूं, वास्तव में श्रद्धा का लक्षण है सब्र, कि हम इंतजार करते हैं। जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर में अगर श्रद्धा है हमें, तो डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते कि अगर तुमको बीमारी हो गई, बहुत बहुत कठिन बीमारी है, तो ऐसे नहीं कि आज दवाई दो कल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले एक महीना दो महीना आप दवाई लेते रहो, और फिर उसके बाद में अंत में आप ठीक हो जाओगे। तो जो समय लगता है वो उसके लिए सब्र रखना आवश्यक है। तो मैं मेरा एक वेबसाइट है 10 मिनट साइंटिस्ट, उसमें मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो वहाँ पे एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में वो शुद्ध भक्त बन गए, तो अगर हम तीव्र से भक्ति करेंगे, रोज ध्यान पूर्वक 16 माला जप करेंगे, तो क्या अगर 6 महीने नहीं पर 10 महीने में क्या हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और अगर नहीं बन सकते हैं तो फिर क्या ये भक्ति में शक्ति नहीं है। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि ये भक्ति में शक्ति नहीं है ऐसा भाव इसे ऐसा नहीं है, पर वास्तव में हमारी चेतना उचित नहीं है। हम अगर भगवान से मांग करते हैं कि भगवान आप इतने समय में ये कर दो, तो फिर जो सेवा भाव है वह कहां रहता है। अगर हम मांग कर रहे हैं भगवान से, तो आज मैं मांग करूंगा कि भगवान 10 महीने में मुझे आप भगवत धाम ले जाओ, तो फिर हमें भगवत धाम में जाके भगवान आज आप लाल ड्रेस पहनो आज आप ये खाओ, आज आप ये लीला करो, तो ये जो अगर मांगने का श्रृंखला चालू हो जाएगा तो मांगने के श्रृंखला का अंत कहां होगा? तो वास्तव में, और फिर हम बोलेंगे भगवान आप मेरी प्रगति कर रहे, अच्छी बात है, पर उसकी प्रगति मत होने दो आप। जब मांगने की श्रृंखला चालू होती है उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसीलिए भक्त जो होता है कि क्या आशा करता है कि भगवान हमेशा आप, आपकी सेवा में मुझे बरकरार रखो, कितना भी समय न लग जाए मुझे शुद्ध होने के लिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर मुझे कभी आपका समय, आपकी जो सेवा है उससे वांछित मत करो। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि मुकुंद मूर्धा प्रणिपत्याचे भवंत में कांतमियंतमर्थम अविस्मृति स्त्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसादात। मैं कहते हैं है भगवान मुकुंद मूर्धा प्रणिपत्याचे, मैं मेरा सिर आपके सामने रखता हूँ और याचना करता हूँ। प्रणिपत्याचे क्या याचना करता हूँ? भवंत में कांतमियंतमर्थम, मैं एक ही चीज मांग कर रहा हूँ आपसे, क्या है? अविस्मृति स्त्वच्चरणारविंदे, कि कभी भी आपके चरण की मुझे विस्मृति न हो जाए, कभी मैं आपको भूलू नहीं। और भवे भवे में स्तु भवत् प्रसादात, वो कहते हैं कि भवे भवे भले ही अनेक जन्म क्यों न हो जाए, मुझे भले ही अनेक जन्म लेने पड़े इस जगत में, वो मुझे मंजूर है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। जरूर मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाऊं, पर ये मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग क्या है? कभी मैं आपको भूलू नहीं, कभी हमेशा मैं आपके चरण कमलों का समय स्मरण करते रहूं। तो इस तरह से जब हम समझते हैं कि अलग अलग प्रकार पद्धति से भगवान हमारा संरक्षण कर सकते हैं, तो फिर उससे भले ही कुछ विपत्ति आ जाए हमारे जीवन में तो हम उससे विचलित नहीं होते हैं। अभी कुछ 4-5 महीने पहले जो राधा गोपीनाथ मंदिर में जब वहाँ पे था, तो वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई। कई 8 भक्त थे, वो जा रहे थे हिमालयों में बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया और वो सबकी मृत्यु हो गई। तभी अमेरिका से राधानाथ महाराज पुनः भारत में आ गए थे, और फिर वो सब उन्होंने सब भक्तों के घर में जाके उनसे मिले और उनको सांत्वना दिया। तो तभी वो एक माताजी भक्त थी, उनकी माँ गुजर गई थी, तो वो बता रही थी बाद में वो अपना हृदय प्रकट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राधानाथ महाराज ने मुझसे कहा कि आप आपके आंसुओं को मत रोको, पर आपका हरेक आंसू कृतज्ञता का आंसू होना चाहिए। लेट योर एवरी टीयर बी अ टीयर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कृतज्ञता कैसे रख सकते हैं हम अगर कोई हमारा बहुत ही करीब के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? तो हम समझते हैं कि इस भौतिक जगत में मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है, पर कृतज्ञता इसलिए है हमारी कि हम जानते हैं कि भगवान की कृपा से हमें एक ऐसा मार्ग, ऐसे संबंध, ऐसी दृष्टि मिली है जो मृत्यु के परे है। तो भक्त के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दो विभाग होते हैं। तो भौतिक जगत में, भौतिक स्तर पे संकट तो आते ही रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ही है, पर हमें इस भौतिक जगत के परे हमारे जीवन में कुछ मिला है और वह शाश्वत है। तो भगवान ने वो दिया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। तो जो भौतिक जगत में जो दुर्घटना होती है उसके लिए जरूर हम दुखी होते हैं। तो मैंने इस पे एक लेख लिखा था, टीयर्स ऑफ सॉरो टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि जो भौतिक जगत पे अगर कोई संकट आता भी है तो हम दुखी हो गए। ऐसे नहीं कि हम हमारे भावनाओं को बंद कर देते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन के विलाप का पूरा एक अध्याय है महाभारत में, पर फिर भी क्या हुआ, वो विलाप तो करते हैं पर उससे उद्विग्न नहीं हो जाते हैं, वो उदास नहीं हो जाते, वो अपनी सेवा और बढ़ा देते हैं भगवान के लिए। 13वां दिन था, वह बहुत ही कौरव के लिए विध्वंस का दिन बन गया। वो 12वें दिन में अर्जुन अभिमन्यु का वध हुआ था। जब तक भीष्म पितामह थे पूरा नैतिकता से युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अगर होते तो कभी अभिमन्यु का इस तरह से वो वध नहीं होने देते, पर उनके बाद में सब नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया गया कि 10वें दिन में भीष्म पितामह गिर गए। तो तभी जो भाव है यह है कि हम भौतिक स्तर पर जो होता है उससे हम हमारे बुद्धि और प्रार्थना के द्वारा कैसे भगवान संरक्षण कर रहे हैं ये समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, पर नहीं समझेंगे तो भी हम समझते हैं कि इसके परे जो आध्यात्मिक स्तर है उस पर भगवान सदैव मुझे आश्रय दे रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में भूकंप आ जाए, आतंकवाद आ जाए, प्रलय आ जाए, दाम बढ़ जाए, जो भी हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है इस भौतिक जगत में, पर हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो आध्यात्मिक स्तर पे भगवान सदैव हमें संरक्षण दे रहे हैं। तो भगवान भौतिक स्तर पे कैसे कार्य करेंगे यह हम पहले इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान की बुद्धि असीमित है। तो इसीलिए हम समझ नहीं सकते कि भगवान किस तरह से भौतिक स्तर पर कार्य करेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा। पर हम अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमें जरूर समय में पता चल जाएगा। तो जब युधिष्ठिर भी बहुत दुखी हो जाते हैं अभिमन्यु के वध के बाद में, तो तभी व्यासदेव वहां पे आते हैं, युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं कि भगवान की, दो वाक्य है इसके हाथ में विराम देता हूं, भगवान की अचिंत्य योजना सबके कल्याण के लिए होती है। तो क्या कहते हैं, भगवान की योजना अचिंत्य है पर वो सबके कल्याण के लिए होती है। और ये पहली बात बताते हैं वो, दूसरी बात बताते हैं कि वो कैसे सबके कल्याण के लिए है। ये अगर आप उनकी सेवा करते रहोगे तो काल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए भौतिक स्तर पे, हम भगवान के चरण कमलों में उनकी स्मरण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए रहेंगे तो फिर जरूर भगवान हमें हमारा परम कल्याण दे देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।